ओम शांति। एक बार हम सब मिलकर के उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा यज्ञ में हम सब ने सुना है, आदि में बाबा और सभी ब्राह्मण वत्स मिलकर के गुला करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेंगे और उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। आज सुबह भी जो अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली हम सब ने सुनी, उस मुरली का सार क्या था, किस शक्ति के लिए बाबा ने प्रयोग के लिए बार बार हम बच्चों को कहा, शांति की शक्ति, क्योंकि यही शांति की शक्ति है जो व्यक्ति को सुख का, चैन का, शक्ति का, आनंद का अनुभव कराती है। अगर जीवन में शांति नहीं, कोई न कोई अशांति का कारण बन जाता है, जैसा कि वर्तमान परिस्थितियों में भी बना हुआ है, भय का वातावरण बना हुआ है, कहीं पर निराशा का वातावरण बना हुआ है, और इस कारण से सबसे पहली जो कैजुअल्टी होती है, सबसे पहला जो मनुष्य अपने मन की जो खोता है शक्ति को, वो है शांति और सुख, उसको खो देता है। और इस कारण से आज की रिवाइज कोर्स की मुरली में बाबा ने बार बार शांति की शक्ति का प्रयोग उसके लिए बाबा ने खास कहा है। तो ये शांति की शक्ति है क्या? हम सब समझते हैं जीवन में अगर सब नॉर्मल चल रहा है तो जैसे कि शांति भी है। वास्तव में देखा जाए शांति अनेक प्रकार की होती है, लेकिन फिर भी मोटे रीति से शांति पांच प्रकार की कही जा सकती है। एक शांति है मतलब अशांति का अभाव, यानी कि हल्ला गुल्ला, सबसे आप अलग हैं और थोड़ा सा आपको लग रहा है नॉर्मल, तो उसको ही शांति हम लोग समझ बैठते हैं। वास्तव में वो शांति नहीं है, वो थोड़े समय के लिए अशांति का अभाव है। जहाँ पर बहुत हल्ला गुल्ला है उससे आप थोड़ा वातावरण से अलग चले गए तो देखने में लगेगा कि शांति है, लेकिन वो वास्तव में मन की शांति नहीं है, अशांति से आप थोड़ी दूर चले गए, हल्ले से दूर चले गए तो एक वो हो गया। फिर एक दूसरी प्रकार की शांति है, वो कौन सी शांति, जो हम थोड़े समय के लिए ऐसे वातावरण में जाके महसूस करते हैं जहाँ का वातावरण कुछ थोड़ा सा शक्तिशाली होता है। जैसे कोई मंदिर में जाएगा, थोड़े समय के लिए वहाँ के वातावरण के प्रभाव में आकर के शांति की स्थिति का अनुभव करेगा। कोई मस्जिद में जाएगा, कोई गिरजाघर में जाएगा, गुरुद्वारे में जाएगा, वहाँ के वातावरण के अंदर ऐसा प्रकंपन होते हैं कि व्यक्ति ये समझता है कि हाँ ये एक शांति है। ये भी एक शांति है, लेकिन थोड़े समय के लिए है। जितनी देर तक हम उस वातावरण के प्रभाव में हैं, उतनी देर तक थोड़े समय के लिए दुनिया की भेंट में हमें शांति की स्थिति का अनुभव होता है। एक तीसरी प्रकार की शांति है, कौन सी शांति, वो है भय मिश्रित शांति। उसमें भय होता है, शांति है, सन्नाटा है। जहाँ पर कोई व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया होता है, अथवा शमशान घाट में जाइए, वहाँ पर भी हल्ला गुल्ला नहीं होगा कुछ, लेकिन कहने के लिए बातचीत नहीं होगी, लेकिन भय का वातावरण होगा, भय मिश्रित शांति। उस भय मिश्रित शांति को भी कोई नहीं चाहता। सब जानते हैं, चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन वो शांति में भय ना हो, शांति हो, सुखदाई हो, आनंददाई हो। तो ये है भय मिश्रित शांति, इससे भी लोग दूर भागते हैं। चौथी शांति है कौन सी, जब व्यक्ति प्रकृति की गोद में चला जाता है। कई बार प्रकृति की गोद में जाते हैं, एकांत में पहाड़ों पर चले गए, समुद्र के किनारे एकांत में चले गए, तो वहां पर भी शांति की अनुभूति होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो शांति भी जो है थोड़े समय के लिए ऐसा होता है, क्योंकि अंदर की तक वो शांति नहीं पहुंच पाती। बाहर के वातावरण में शांति होती है, लेकिन अगर मन के अंदर हलचल है, कोई भी समस्या है, तो मन बहुत हलचल में होगा, और बाहर अगर थोड़ी बहुत शांति भी हुई तो उस शांति का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर उतना लास्टिंग नहीं रहता। थोड़े समय के लिए हो जाएगा, लेकिन सदाकालीन नहीं होता। और पांचवी एक शांति है, जो शांति जो आत्मा का स्वधर्म है, क्योंकि हम कहते हैं आत्मा शांत स्वरूप है, तो स्वधर्म में थोड़े समय के लिए जब आत्मा स्थित हो जाती है तो वो शांति की अनुभूति वो करती है, लेकिन वो शांति उतनी देर तक ही है जितनी उस आत्मा के अंदर शक्ति है। कई होते हैं धर्म, कई मान्यताएं होती हैं, उसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं होता, उसमें बस एकांत में बैठ गए, प्रकृति की गोद में बैठ गए, आसन लगा लिया, हट योग में का आधार ले लिया, तो थोड़े समय के लिए वो शांति अवश्य मिल जाएगी। लेकिन उस आत्मा में जितनी अपनी शांति निहित होगी, उतनी ही शांति का अनुभव कर सकेगी। बार बार वो आत्मा जैसे उस स्थिति से बाहर आई, फिर बुद्धि भटक जाएगी, फिर वो खींच कर लाएगा मन को, फिर थोड़े समय में शांति की स्थिति का अनुभव करेगा। जैसे कि कुछ धर्मों में, विशेष करके बौद्ध धर्म होता है, उसके अंदर ईश्वर का कोई स्थान उतना नहीं होता और वो यही समझते हैं कि बस आत्मा खुद शांत स्वरूप है और आत्मा की शांति में स्थित होना है। लेकिन ये भी लास्टिंग नहीं होती है, और जो अंतिम है शांति, जो परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, उससे जब योग लगाते हैं तो उससे, उस सागर से लगातार शांति का प्रवाह जब आत्मा के अंदर आता रहता है, तो आत्मा शांति की स्थिति का एक लास्टिंग सदाकाल का अनुभव करती है। तो देखा जाए ये 5-6 प्रकार की जो शांति है और जो बाबा ने हमें बताई है, वो है सर्वोच्च शांति, क्योंकि वो शांति ऐसी अनुभूति की चीज है कि उस शांति का एक बार जब अनुभव कर लेते हैं तो व्यक्ति बार बार उस शांति की अनुभूति करना चाहता है। क्योंकि सागर से कनेक्शन जुड़ गया, पानी का नल होता है, टंकी से कनेक्शन होगा, पानी आता रहेगा, लेकिन कनेक्शन टंकी से नहीं होगा, छोटा मोटा डिब्बे से होगा, तो थोड़ा समय आएगा और जब वो पानी खत्म हो जाएगा फिर पानी का अभाव हो जाएगा, ऐसी शांति का अभाव हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने बताया आज कि बाबा अब ये चाहता है कि बच्चे शांति की स्थिति का अनुभव करें, और खाली अनुभव ही ना करें, एवं नहीं तो शांति में समझते हैं जैसे चुप, मौन का व्रत, वो भी आवश्यक है, मदद करता है आंतरिक शांति में। लेकिन बाबा ने तो यहाँ तक भी बताया कि हम बोलें लेकिन उसमें भी शांति की स्थिति हो, बोलने में भी ऐसे शांति के वाइब्रेशन हो कि लोग उस शांति की अनुभूति करें। इसीलिए बाबा ने आज बताया ना, शांति की शक्ति के साथ साथ और भी जो बताया, हाँ 3 सत्ताएं बताई ना, जो आज सुबह बाबा ने जो रिवाइज कोर्स की मुरली में, उसमें भी ये, हाँ कौन कौन सी 3 सत्ताएं हैं सबको मालूम है ना, हाँ कौन कौन सी, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और राज्य सत्ता। और देखो बाबा की मुरली भी इस समय ऐसी चली, ये सभी सत्ताएं जो हैं बहुत हलचल में, और इतनी ज्यादा हलचल में है, तीनों के वैसे क्षेत्र अपने अपने हैं लेकिन तीनों सत्ताएं बहुत हलचल में है, और इतनी हलचल में है कि किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है क्या करे। लेकिन इन चीजों से हमें, हर चीज से बाबा ने क्या कहा, एक लाइन बाबा ने हम बच्चों को परमानेंट हमेशा के लिए दी है, सदा ये समझो, क्या समझो, हर चीज में कल्याण है, हर चीज में कल्याण है। इसमें क्या कल्याण है, जो बीमारी का, कोरोना का, या चारों तरफ जो वातावरण है उसके अंदर हलचल है, क्योंकि बाबा कई बातें हम बच्चों को कहता तो आया है, जैसे अचानक एवर रेडी, ये सब बाबा ने कहा, प्रकृति की हलचल, बहुत बातें बाबा ने कहा, बीमारियों का, सब तरफ हलचल होगी, कहा तो है, लेकिन हम बच्चे भी सुनते हैं, थोड़े समय के लिए रियलाइज भी होता है, प्रयास भी हम करते हैं, लेकिन वो परमानेंट उतना नहीं हो पाता जितना बाबा चाहता है। इस कारण से एक छोटी सी बात में ही, एक बार में ही बाबा ने पूरे विश्व को इस बात का अनुभव करा दिया। ड्रामा ने कहे, ड्रामा नहीं कहेंगे, ड्रामा ने अनुभव करा दिया कि किस प्रकार से सारा संसार हलचल में आ गया। क्योंकि एक तरफ नहीं तो बहुत सुपर पावर होती है, वो अपने नशे में रहती है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी सुपर पावर अमेरिका आदि, बहुत इटली आदि, बता रहे थे इटली का कितना जीडीपी, कितना धनी देश है, और उस हिसाब से देखा जाए तो वो वहाँ तो सबसे ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है चीन के बाद। तो ये सब इसलिए व्यक्ति बाबा अनुभव करा रहा है, हरेक को ये रियलाइजेशन हो कि उनके पास दुनिया की सर्वोच्च सब चीज नहीं है। सबसे ऊंची से ऊंची सत्ता कौन सी है? धर्म सत्ता, धारणा की सत्ता। और इस कारण से आध्यात्मिकता की तरफ लोगों का ध्यान जाए। अभी भले भारत वैज्ञानिक रीति से उतना एडवांस नहीं है, फाइनेंशियल रीति से, धन की रीति से चाहे उतना एडवांस नहीं रहे, लेकिन आध्यात्मिक रीति से है और इसका अनुभव लोग कर रहे हैं कि इतना सब होते हुए भी बीमारी चारों तरफ, कोरोना का ये फैल रहा है, लेकिन भारत फिर भी काफी हद तक उसमें कंट्रोल करने में सफल रहा है। तो धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग लोग देखेंगे कि बड़ी से बड़ी शक्ति जो है वो आध्यात्मिक शक्ति है, इस बात को वो स्वीकारेंगे। लेकिन स्वीकार तब स्वीकार करते हैं जब प्रैक्टिकल उस बात को देखते हैं, और जब वो देखेंगे तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही सत्ता है, यही है आध्यात्मिक, और जो सर्वोच्च सबसे ऊंची से ऊंची सत्ता है उसको देखेंगे। तो इसीलिए बाबा ने मुरली में आज ये भी हम बच्चों को रियलाइज करवाने की कोशिश करी कि ये जो तीन सत्ताएं हैं, ये तीन सत्ताएं भी, लेकिन इन सत्ताओं में भी हम बच्चे भी कैसे हरेक को अनुभव करा सकेंगे। अपने को भी हमें अनुभव करना है, दूसरों को भी अनुभव कराना है, उसके लिए बाबा ने कहा है क्या चाहिए? बच्चों की बुद्धि भी क्लीन और क्लियर बुद्धि चाहिए। जितनी हमारी बुद्धि क्लीन होगी, क्लियर होगी, और ये क्लीन और क्लियर बुद्धि हर चीज को सफलता की तरफ हमें ले जाएगी। जो भी कार्य करेंगे हर चीज में सफलता ही सफलता होगी, और ये इसके लिए आवश्यक है कि हम जो बाबा ने बताया ना क्लीन और क्लियर बुद्धि के लिए, एक तो हम ये भी ये रखें जो पहला पहला लेसन है, हम तो ये कहते ही है कि हम आत्मा हैं, लेकिन बाबा ने जो बताया है मैं करणहार और करावनहार, दोनों स्थिति में समय प्रति समय हमें स्थित होना है। मैं इन कर्मेंद्रियों के द्वारा करा रही हूँ, ये आँख के द्वारा देख रही हूँ, कानों के द्वारा सुन रही हूँ, और इन स्थितियों में जितना जितना हम रहेंगे तो आगे आने वाले जितने भी पेपर होंगे उन सब को हम बहुत ही साक्षी होकर के सफलतापूर्वक पार कर सकेंगे। देखो साक्षी दृष्टा, हाँ, इसीलिए बाबा ने कहा है हम बच्चों को कि साक्षी दृष्टा होकर के हम बच्चों को सब दृश्यों को देखते चलना है। ये आँख है ना, ये दृष्टि है, तो ये दृष्टि है और दृष्टि ये आँख, ये जो है ना, दृष्टा कौन है? आत्मा दृष्टा है, आत्मा दृष्टा और ये दृष्टि आँख, तो इन दृष्टि के द्वारा आत्मा दृष्टा देख रही है। एक तो ये जैसे खिड़की होती है ना, खिड़की के थ्रू हम लोग देखते हैं, तो ऐसे ही खिड़की के थ्रू देखते चले, देखने वाली देखने वाले हम हैं, लेकिन खिड़की के थ्रू देखते हैं, खिड़की नहीं देखती, खिड़की के थ्रू देखने वाला कोई और, ऐसी आत्मा दृष्टा इन खिड़की के थ्रू देखती है। और यही लेसन बाबा ने इतना पक्का कर लिया, भले आप सबने भी सुना है, लिख लिख के भी बाबा ने पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है, सबका, बच्चों का, पति पत्नी, हरेक का लिख लिख के इतना पक्का किया कि बाबा को इतना पक्का हो गया। तो हमें याद है जब हम लोग, हमें भी बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का काफी 6-7 साल मौका मिला, 62 में ज्ञान में आए और 69 तक अनेक अनेक बार बाबा से मिले, तो हम देखते थे कि बस बाबा को इतना ये पक्का हो गया था, जैसे ही बाबा किसी की तरफ ना देखते थे, सबसे पहले तो कोई भी आता था, बाबा ऐसे हाथ, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, स्वीट, बस, और उसमें इतनी चुंबकीय ताकत होती थी, मैग्नेटिक फोर्स होता था कि बस हम खींच करके बाबा की बाहों में चले जाते थे। और केवल इतना ही नहीं होता था, बस जैसे ही बाबा ने दृष्टि दी एकदम विदेही हो जाते थे अशरीरी, क्योंकि बाबा ने अशरीरीपन का पाठ इतना पक्का किया हुआ था कि बाबा जिसे भी दृष्टि देते थे वो तुरंत अशरीरी हो जाता था। तो एक तो हम वर्तमान परिस्थितियों में शांति की शक्ति का प्रयोग अगर करना है तो ये ही प्रयोग पहले यहाँ से शुरू करें कि मैं कितना खुद आत्मिक स्वरूप में स्थित हूँ और दूसरे को मैं कितना आत्मिक स्वरूप में मैं आत्मा देखती हूँ, देह जैसे नजर ही ना आए, मैं आत्मा दूसरे को देख रही हूँ, फलानी आत्मा को जैसे बाबा, और बस वो विदेही हो जाता था। फिर अब पार्टी तो होती थी, कई लोगों को मिलना होता था, बस थोड़ी देर के लिए विदेहीपन का, अशरीरीपन का अनुभव करते थे, फिर बाबा कहते थे हाँ बच्चे, आओ आओ बच्चे, वो जैसे आत्मा, कोई आत्मा चली नहीं जाती थी, लेकिन जैसे शरीर के अंदर ना देह कॉन्शियसनेस थोड़ी देर के लिए जैसे विड्रॉ हो गई, फिर आ गई, और फिर उसके बाद बाबा हालचाल पूछते थे, टोली मुंह में खिलाते थे, नाम पूछते थे, और बस उसके बाद वो एक जाता था, दूसरा आ जाता था और हरेक ये अनुभव करता था मैं अशरीरी हो गया, देह भान से न्यारा हो गया, भले थोड़ी देर के लिए, जितनी देर तक। तो ये है एक शांति की स्थिति, जो अपने तक ही न रहे, हम दूसरों तक भी उसके वाइब्रेशन, उसका ऑरा, उसकी लाइट, उसकी माइट वो दूसरे तक फैला सकें और वो दूसरा वो अनुभव कर सके। तो एक तो ये बाबा का जीवन का सुनने का लक्ष्य भाव यही होता है कि हमें वैसा बनना है, धीरे धीरे वैसा उस स्थिति को प्राप्त करना है। दूसरा बाबा का क्या देखते थे कि जब भी आते थे ना, तो पहले देखते थे बाबा बहुत लगता था स्थूल रीति से बहुत मिल रहे हैं, आओ बच्चे, साथ साथ घुमाते थे, ले जाते थे पहाड़ियों पर घुमाने के लिए। लेकिन धीरे 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 बाबा हर चीज को समेटते जा रहे थे। तो अब वही समय आ गया है जब हम सब बच्चों को धीरे धीरे सब तरफ से समेटना है, और समेट करके फिर क्या करना है, जितना हम समेटते जाएंगे ना उतना कम, पहले बाबा हालचाल पूछते थे क्या सेवा करी और अब क्या सेवा का प्लान है, काफी समय देते थे एक एक बच्चे को 10-15 मिनट 20 मिनट, धीरे धीरे कम होते 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 बस 1-2 मिनट तक ही रह गया। हाँ बच्चे कुछ बोलना है, कुछ पूछा, उत्तर दिया, उसके बाद फिर बाबा न्यारे हो गए। तो दूसरा हमें ये देखना है कि हम भी धीरे 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 अपने को समेटते जाए ब्रह्मा बाबा की तरह, क्योंकि हम सभी को भी कर्मातीत अवस्था को तो प्राप्त करना ही है। तो बाबा ने जैसे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, पहले इतना टाइम एक एक को देते थे, हम धीरे 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 समेटते जाए। और जहां पर 10 शब्द बोलने की जरूरत हो वहां 1 शब्द बोले, 2 शब्द बोल के वो काम पूरा करें जो बाबा कहता है, और जितना समेटते जाएंगे उतना उतना क्या होगा, अंतिम स्थिति की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंत के लिए बाबा ने हमें क्या बोला है, अंतिम स्थिति अंतमति सोगति। अंत में अगर हमारी बुद्धि कहीं भी किसी देहधारी में अटकी, कि वस्तु में अटकी, व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में, कोई भी चीज में अटकी, तो तब सदगति तो होगी नहीं जैसा बाबा चाहता है। अंत में एक बाबा ही याद रहे और कोई याद न रहे। तो ब्रह्मा बाबा ने खुद ये पुरुषार्थ किया, इतना बड़ा यज्ञ था सारा, सब तरफ से इतने सारे बच्चे, रोज इतने पत्र आते थे, पत्रों के उत्तर देते थे, रोज सुबह शाम क्लास, रोज इतने बड़े यज्ञ की संभाल करना, लेकिन व्यक्तिगत पुरुषार्थ बाबा का सदा चलता रहता था। और कैसे पता चलता था हम लोगों को, कि जब पार्टियां आती थी बाबा से मिलने के लिए, तो पार्टी आकर के पार्टियों को पहले से टाइम दिया हुआ था कि भाई 10 बजे दिल्ली की पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे कलकत्ता की, 11 बजे बम्बई की, 11:30 बजे अहमदाबाद की, ऐसे अलग अलग पार्टियों को टाइम देते थे। तो बस अपने निर्धारित समय पर जब, और बाबा का मिलने का 3 स्थान होते थे ऊपर, जिन्होंने देखा है पांडव भवन में, या तो बाबा का कमरा, 2-3-4 लोग होते थे, कई बार बाबा के कमरे में ही मिल लेते थे, और 5-6-7 होते थे झोपड़ी में मिलते थे, बाबा की झोपड़ी, और अगर ज्यादा 10-12-15 की पार्टी होती थी तो हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। इनसे ज्यादा की पार्टी तो रेयरली होती थी, कम होती थी, लेकिन हिस्ट्री हॉल में तो बहुत समा जाते थे। तो जब टीचर इंचार्ज जाती थी बाबा के निर्धारित समय पर जो टाइम दिया होता था और जिस जगह का दिया होता था वो जाती थी तो देखती थी कि बस बाबा अपनी मस्ती में ही ना, जैसे आंख भी खुली हुई है लेकिन जैसे बाबा किसी गहन सोच में डूबे हैं। तो टीचर जाती थी अंदर, कहती थी बाबा बाबा, तो बाबा को थोड़ा सा जैसे ना, जैसे एकदम देह में ना आके बाबा बुद्धि को जैसे वहां लाते थे, फिर पूछते थे हाँ बच्ची बोलो, तो बाबा फलानी पार्टी लाई हूँ, ये टाइम दिया है, हाँ हाँ बच्ची ले आओ पार्टी को। तो सब पार्टी वाले आते थे और बाबा से एक एक करके मिला करते थे, जहाँ पर भी जो निर्धारित स्थान होता था। और उसके बाद मानो लास्ट के 5-7 मिनट 10 मिनट बच गए, तो वो पार्टी अगर चली जाती थी तो बाबा फिर उस 5 मिनट को भी यूटिलाइज कर लेते थे, 7 मिनट को, और फिर वो पार्टी गई, फिर बाबा एकदम जैसे देह से न्यारे हो गए, और देह से न्यारे हो करके फिर जैसे बाबा, जैसे बच्चों को बताते हैं, आज भी बताया, हाईएस्ट स्थान परम धाम, तो कभी परम धाम कभी सूक्ष्म वतन या कभी बच्चों के पास कोई भी जैसा भी आवश्यकता होती थी बाबा बुद्धि को वहां ले जाते थे। तो ये एक बात है कि बाबा एक एक मिनट यूटिलाइज करते थे। ये 5 मिनट अगर बच गया तो हम सोचेंगे चलो आधा घंटा होगा तब बैठ के योग करेंगे, 10 मिनट होगा, लेकिन नहीं, बाबा एकदम एक एक। तो ये धीरे 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 करके समेटना, ये एक बहुत बड़ी बात थी जो हम सब लोगों को भी इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि लौकिक में अगर हमने बहुत फैलाया हुआ है, बिजनेस हो, नौकरी हो, धंधा हो, परिवार हो, तो पॉसिबिलिटी यही है कि अंत समय वही सब याद आएगा, और फिर अंत मते सोगते तो होगी नहीं, कहीं ना कहीं पर बुद्धि भटक गई, चली गई, तो वो याद आएगा। और अक्सर करके यही होता है, लौकिक में भी बोलते हैं कोई आत्मा जाने वाली होती है शरीर से लेकिन नहीं जा पाती, तो अक्सर करके बोलते हैं अभी ये फलाने का इंतजार कर रही है, इसका उसका इंतजार है, जब वो आ जाता है, दिख जाता है, बात हो जाती है, फिर वो आत्मा फ्री हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा ना हो कि हम भी बहुत फैलाया हुआ हो, अब समय है धीरे धीरे जो फैलाया हुआ है उस फैलाए हुए को हम समेटते जाए, जिससे बाबा भी बड़ा सहज ही कर्मातीत अवस्था को ब्रह्मा बाबा ने भी पा लिया। और क्या आवश्यकता है? और ये है कि जितना जितना हम निकट कर्मातीत अवस्था की तरफ चलते चले जाते हैं ना, तो मन जो है बाबा को शुरू से ही ये महसूस होता था। आपने सुना होगा कि 1936-37 में जब बाबा ज्ञान में आए तो मन, हमारा तो सारा खेल ही ज्ञान ही मन का है, तो बाबा को भी ये महसूस होता था मन जो है ये भाग जाता है। मन को स्थाई करते हैं एक जगह, मन भाग जाता है, कभी बिजनेस की तरफ, कभी पार्टनर की तरफ, कभी परिवार की तरफ, कभी धन दौलत की तरफ, आदि आदि। तो बाबा ने जब ये रियलाइज किया तो मन को पत्र लिखा, वो आप सबने सुना हुआ होगा, बाबा ने मन को पत्र लिखा कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ और तू मेरा मंत्री है, लेकिन तूने मुझ आत्मा राजा को अपने वश में कर लिया, और मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा। तूने मुझे अपने वश में कर लिया, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूँ कि अब मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे नहीं भागूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ और तू मंत्री है, तुझे मेरा कहना मानना है, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, तुझे मेरे कहने पर चलना है। और इस तरह बाबा ने मन को ऑर्डर किया और आत्मा को बलशाली बनाया। मन को धीरे धीरे कमजोर मन होता गया और आत्मा बलशाली, तो आत्मा के कंट्रोल में मन जैसे आ गया। तो उससे क्या हुआ, धीरे 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 बाबा जिधर चाहे मन को सेट कर सके। ऐसे ही बाबा ने धीरे धीरे बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के पीछे पीछे भागती रही मन के साथ साथ, और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा को बहुत कमजोर कर दिया। लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूँ कि हे बुद्धि, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मुझ आत्मा राजा के, अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। और इस तरह बाबा ने मन और बुद्धि उन दोनों को जब अपने वश में, अपनी स्वस्थिति में स्थित हो करके, जब भी हम मन या बुद्धि को ऑर्डर करते हैं तो मन या बुद्धि उस ऑर्डर को तुरंत मान लेती है। कोई ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर भी होता है या पॉलिटिशियन भी होता है, अब इलेक्शन है कहीं पर है, वो कोई प्रधानमंत्री भी है, राजा भी है, बड़ा है, लेकिन अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो कोई भी फिर बाद में उसकी बात नहीं मानता। पहले जब तक वो सत्ता में है तब तक सब उसकी बात मानते हैं। ऐसे ही हमें भी ये देखना है कि मेरा मन अपने स्वस्थिति की सीट पर स्थित है। जब तक स्वस्थिति की सीट पर मन होता है तो मन हमारी सब बात, जो भी ऑर्डर मन करता है, सब कर्मेंद्रियां उस बात को मानती हैं। लेकिन अगर मन स्वस्थिति की सीट पर स्थित नहीं है तो ये कर्मेंद्रियां भी चंचल होकर के अपने अपने रीति से चलती है, मन के कहने पर नहीं चलती। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पहले हम मन और बुद्धि को स्वस्थिति की सीट पर सेट करें। और वो सेट जैसे बाबा ने कहा ना, तो हम रोज दरबार लगाएं। बाबा ने एक तो डायरी में तो यही लिखा, पक्का किया, ये आत्मा है, ये आत्मा है, जो भी संबंधी थे, मित्र थे, सबका पक्का किया। और दूसरा, रोज बाबा कहता था कि दरबार लगाओ, मन बुद्धि की दरबार लगाओ, रोज उनको ऑर्डर करो, देखो आज मन ने मेरी कोई बात, कौन सी बात नहीं मानी। मन अपनी मर्जी से तो मन ने कार्य नहीं किया, तो ऐसे ही मन बुद्धि को ऑर्डर करो, रोज रात को दरबार लगाओ, जिसे हम बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। और जब हम चार्ट लिखना लगते हैं ना, तब हमें आभास होता है, अरे इतनी बार आज मन ने हमारी बात नहीं मानी, इतनी बार मैंने ये करा। तो जब हमारा थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होता है तो मन धीरे धीरे, आज 10 बार बात नहीं मानी, अगर हमने लिखा हुआ होगा, कंट्रोल किया हुआ होगा, तो कल पता चलेगा 8 बार नहीं मानी, परसों 6 बार नहीं मानी, ऐसे धीरे धीरे करके मन भी हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। और ये बहुत आवश्यक है अंत समय के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में भी जो गायन है, कौन सा, मन जीते जगत जीत, और वो हमने बाबा का अनुभव किया। देखो हमें एक और सौभाग्य, वैसे तो बाबा को हम कई बार मिले लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य हमें वो मिला बाबा से मिलने का कि हम बाबा को 17 और 18 जनवरी 1969 जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो उन अंतिम दो दिन में हम मधुबन में ही थे और मधुबन में बाबा से उन अंतिम दो दिन में कई बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके अंदर हमने देखा किस प्रकार से बाबा मन जीते जगत जीत हो गए थे। पहले तो जब हम मिलते थे कभी बाबा पूछते थे हाँ बच्चे कोई बात है, कोई प्रश्न होता था, हम बात कहते थे, बाबा उसका उत्तर देते थे और इस प्रकार से वार्तालाप चलता था। लेकिन अंतिम दो दिन में, गौर से सुनिएगा, अंतिम दो दिन में हमने देखा कि बाबा के सम्मुख हम जाते थे कि बाबा से हम ये पूछेंगे, बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी और दृष्टि दे करके बाबा कहते थे बच्चे ये पूछने आए हो, हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो बाबा कहते थे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी मन की बात भी सीधी, बाबा उस बात को सीधा समझ जाते थे। ये स्थिति है मन जीते जगत जीत की स्थिति। और ये कर्मातीत अवस्था को जब आत्मा होती है तब ये स्थिति, इसका सहज वो भी अनुभव करती है और दूसरे भी सब उसको अनुभव करते हैं। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार, इन दो दिन में 6-7 बार ऐसा हुआ, जब जब बाबा के पास जाते थे बस बाबा से मिलते थे, बाबा कहते थे ये पूछने आए हो और उसका समाधान कर देते थे और बस बात खत्म हो जाती थी। तो ये मन जीते जगत जीत की स्थिति। और क्या होता है, ये हमें भी ये स्थिति कौन प्राप्त कर सकता है, जिसके अपने मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे किसी भी प्रकार का। क्योंकि हमारे मन में कोई व्यर्थ संकल्प हुआ और आप मानो हमारे सामने आए तो हमारे अपने व्यर्थ संकल्प आपके संकल्पों के साथ मिक्स हो जाएंगे और हम आपकी असली बात को समझ ही नहीं सकेंगे और उस बात का समाधान फिर कहां से देंगे। तो इसीलिए इसके लिए ये जरूरी है कि हमारे मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प ना हो, एक भी व्यर्थ संकल्प। और इसीलिए बाबा ने बताया था, एक मुरली में गुलजार दादी बता रहे थे कि बाबा बच्चों को एक सर्टिफिकेट तो देता है कि बच्चों में अब मेजोरिटी बच्चों में अब विकारी संकल्प तो नहीं है लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी बच्चों में है। तो विकारी संकल्पों के ऊपर तो हमने काफी विजय प्राप्त कर ली, विकारी संकल्प नहीं आएंगे लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी आते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए था, और बहुत सारे जो पूरे दुनिया की बातें होती हैं तो वो बातें व्यर्थ संकल्प के रूप में अभी तक भी आती है। तो बाबा चाहता है बच्चों को ये समझना चाहिए ये व्यर्थ संकल्प नहीं है, ये है विकारी संकल्प। जैसे विकारी संकल्पों को हम दृढ़ता से नहीं आने देना चाहते, कोई विकारी संकल्प आया नहीं, बाबा ने एकदम मना किया हुआ है, वो नहीं आएंगे, लेकिन व्यर्थ संकल्पों को फिर भी छुट्टी दे देते हैं। तो बाबा चाहता है व्यर्थ संकल्प भी अब बच्चों को बिल्कुल नहीं आने चाहिए। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा और 18 जनवरी की बात है सीधा। तो ये तो हमने अनुभव किया, 18 जनवरी 1969 की बात, 1969 हम मधुबन में ही थे। मधुबन में बाबा ने आके सुबह क्लास में, हमेशा बाबा आते थे, थोड़ा योग भी कराते थे और ऐसे कई बार गला साफ करते थे, तो जो रिकॉर्ड होते थे, पहले हमारे तो रिकॉर्ड होते नहीं थे, फिल्म वाले ही रिकॉर्ड होते थे, उसकी एक दो लाइन बजती थी, वो फिर रोक दी जाती थी और उसके बाद बाबा मुरली चलाते थे। लेकिन 18 जनवरी की सुबह बाबा ने उसमें एक भी मुरली नहीं चलाई, एक भी शब्द नहीं बोला। पहले योग कराया, फिर बाबा ऐसे तैयार जैसे होते थे, लगता था कि बाबा मुरली चलाएंगे, हम लोग भी पेन डायरी लेके तैयार होते थे, फिर बाबा योग कराने लगते थे। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा लगता था कि अब मुरली चलाएंगे, मुरली के बजाय फिर बाबा योग कराने लगते थे। उस दिन बाबा ने पूरा टाइम योग कराया, एक एक बच्चे को बल भरा, शक्ति भरी, और उसमें भी विशेष बल और शक्ति, दादी प्रकाशमणि जी आगे बैठे हुए थे, तो दादी प्रकाशमणि जी को विशेष बल और शक्ति भरी। हम भी सामने बैठे हुए थे, सुन रहे थे योग। तो बाबा ने फिर उसके बाद ना 18 जनवरी को, उसके बाद बाबा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग कह के गए। बाद में बाबा ने ईशु दादी जी को बोला, आज बच्चों को जितने भी पत्र हो सब पत्रों के उत्तर लिखा लो, कोई भी पत्र अनआंसर्ड ना रह जाए, बिना जवाब दिए हुए ना रह जाए। तो देखो बाबा को आभास हो गया था कि आज ये बाबा का इस शरीर के अंदर ये अंतिम दिन है, क्योंकि बाबा ने जितनी जितनी एक्टिविटी उस दिन करी उन सब चीजों से बाद में आवाज हुआ। पहले तो कोई इस बात को सोचने को ही तैयार नहीं होता था। एक तो बाबा ने कहा, सब तो यीशु दादी ने सारे पत्र लिखवा लिए, और नहीं तो बच्चों को यही रहता, जिसने पत्र लिखा हुआ होता और बाबा का उत्तर न गया होता तो उसके मन में व्यर्थ संकल्प चलता, देखो बाबा ने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। तो एक बात तो ये, दूसरा बात कि माउंट आबू में नक्की लेक के पास जो हमारा म्यूजियम है ना, तो वहाँ पर प्रदर्शनी वगैरह लगाई हुई थी और वो बिल्डिंग लेने की बात चल रही थी, लेकिन तब तक यज्ञ के पास इतने साधन वगैरह नहीं थे, तो पेंडिंग पड़ा हुआ था। लेकिन उसी दिन ही, अंतिम दिन ही बाबा ने क्लियर करा कि उस बिल्डिंग को ले लिया जाए और वहाँ पर सेवा का स्थान बनाया जाए। तो इस तरीके से वो भी बाबा को, क्योंकि लास्ट डे ही बाबा ने उसे जैसे क्लियर किया। तीसरी बात, रोज रात्रि क्लास जो होती है वो होती है लगभग 8:45 रात्रि क्लास, शुरू से मधुबन में नियम है। लेकिन उस दिन बाबा ने बोला कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, शाम को 6:30-7 बजे ही सब बच्चे भोजन करके आए, ये खास इंस्ट्रक्शन थी, सब बच्चे भोजन करके तब क्लास में आए। तो देखो बाबा ने पहले से हिंट दे दिया था, क्योंकि अगर कुछ सोचते कि क्लास के बाद भोजन कर लेंगे तो फिर तो भोजन करने की स्थिति नहीं थी। अंतिम दिन की बात चल रही थी 18 जनवरी 1969 की, तो उस दिन क्लास जल्दी बाबा ने अनाउंस करी और सब लोग तैयार होकर क्लास में आ गए और बाबा भी जैसे क्लास में आए। अब जनवरी का महीना था, इतने ठंडी के दिन थे, अक्सर करके कफ या खांसी वगैरह बाबा को कई बार आ जाती थी, लेकिन उस दिन 18 तारीख की रात्रि क्लास में आप देखो तो जब आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो शरीर के कर्म भोगों के ऊपर योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। तो उस दिन एक बार भी वो रात्रि क्लास आप सुनो टेप में, एक बार भी न बाबा को खांसी आई, न एक बार भी गला साफ करने की जरूरत पड़ी और इतने फोर्स के साथ बाबा ने वो मुरली चलाई और हमें तो विशेष अनुभव हुआ क्योंकि हम भी सामने बैठे हुए थे तो हमारे मन में भी एक संकल्प आया, बाबा मुरली चला रहे हैं, कुछ बोले हमारे लिए भी हमें, तो बस मन में संकल्प हुआ। और जैसे दुनिया में कहते हैं भक्ति मार्ग में संकल्प होता है, भक्त के मन में संकल्प होता है, और भगवान की बस इच्छा तथास्तु कह के भगवान पूर्ण कर देते हैं। ऐसे ही बस जो हमारे मन में संकल्प था तो बस बाबा ने तुरंत ही नाम लेके भी और बस कई महावाक्य हमारे लिए भी जैसे उच्चारण कर दिए और बस वो जैसे कि हमारे लिए जीवन भर के लिए एक महावाक्य जैसे जीवन भर के लिए बन गए। तो उसके बाद बाबा मुरली चला करके बस उठे, उठ करके थोड़ा दरवाजे की तरफ गए और वहां पर बस पीछे गए बाबा। जाते जाते भी बाबा कई बार रुके और एक एक बच्चे को दृष्टि दी बाबा ने, और ज्यादातर दृष्टि बड़ी दादी को, प्रकाशमणि दादी जी को दी। बार बार दादी जी की तरफ दृष्टि जाती थी और बाबा ने अंत में कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये बाबा ने शब्द पहले कभी भी नहीं बोले। उसी दिन ही 18 जनवरी की रात्रि को मुरली के बाद अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ऐसा कहते हुए बाबा ने छुट्टी ली और फिर बाबा अपने कमरे में वो चले गए। और उसके बाद तो बस सबने सुनाई है, दादी जी के हाथ में हाथ और दादी जी से नैन मुलाकात करते हुए दादी जी को सारी अपनी सूक्ष्म शक्तियों की विल करते हुए जैसे बाबा ने छुट्टी ली। और उसके बाद तो बस ये चारों तरफ जब मैसेज वगैरह गए फिर तो कोई एकदम किसी को जैसे विश्वास भी ना हो, लेकिन बाबा का देखो एक तरफ तो मन जीते जगत जीत, उसका उदाहरण आपको बताया, दूसरा प्रकृति जीते, पांच तत्वों का बना ये शरीर, ये प्रकृति का को भी कैसे बाबा ने जीत लिया था कि 18 जनवरी की रात्रि को बाबा ने शरीर छोड़ा अर्ली नाइट को, और 18 की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन रखा रहा, 19 की रात रखा रहा, 20 का सारा दिन रखा रहा, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। जब बड़ी दीदी दीदी मनमोहनी जी जब टूर पर गए हुए थे और वहां से आए, तब उसके बाद शरीर संस्कार किया गया। लेकिन इतने समय तक भी न कोई इंजेक्शन दिया गया था, न कोई लेप लगाया गया था, न कोई वो किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट किया गया था, लेकिन शरीर एकदम चमक रहा था बाबा का, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे बस बाबा एकदम चमक रहा है, और बाबा का शरीर जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा था सो रहे हैं, और हमेशा की तरह बाबा उठेंगे और कहेंगे आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ, और बस फिर से जैसे कि बाबा बार बार ये कहेंगे, ऐसा लगता था चमकता हुआ शरीर बिल्कुल। तो ये है योगी आत्माओं का प्रकृति जीत का भी लक्षण कि इतने लगभग 65 घंटे तक शरीर रखा रहा बिना कोई दवाई के, बिना किसी उसके, लेकिन वो शरीर भी बिल्कुल चमकता रहा प्रकृति जीत। तो बाबा चाहता है हम बच्चे भी मन जीते जगत जीत तो बने ही, लेकिन इसके साथ साथ प्रकृति जीत भी बने, और जब प्रकृति जीत बनेंगे ये पांच तत्वों को, इसीलिए बाबा कहता है कि रोज जो है प्रकृति को पांच तत्वों को भी योगदान करो, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, जैसे सृष्टि की और आत्माओं को भी हम लोग योगदान करते हैं ना, ऐसे ही प्रकृति के इन पांच तत्वों को भी हम प्रतिदिन योगदान कुछ मिनट अवश्य करें, क्योंकि ये ही प्रकृति जो है ये हमारे साथ सतयुग के आदि से लेकर कलयुग अंत तक 84 जन्मों के शरीर का आधार तो यही प्रकृति ही है ना, यही पांच तत्वों का ही तो निर्मित ये शरीर है। तो इसीलिए ये शरीर भी हमें सतयुग से जब कलयुग के अंत में भी ये इतना अच्छी तरह हम सब लोगों को सहयोग दे रहा है, तो समझो सतयुग के आदि से लेकर तो कितना ना सहयोग रहा होगा इसका। तो इसीलिए एक तो हमारा मन में सदैव ये रहे, दूसरा जैसे बाबा को आभास हो गया था कि बस अब इस शरीर के साथ मेरा पार्ट भी पूरा हो रहा है, ऐसा ही हम बच्चों को भी ना ऐसा होना चाहिए। अंत समय में भीष्म पितामह की तरह, जैसे भीष्म पितामह अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर आए, तो ऐसे ही हम भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। अगर ऐसे ही हुआ, अर्थक्वेक हुआ, फ्लड आ गया, सुनामी आ गई और दुनिया भी मर गई और हम भी उसी में ही चले गए, तो दुनिया में और हमारे में फर्क क्या रहा। हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, और वो तब होगा जबकि ये जो पांच तत्व जो है ना, इन पांच तत्वों को हम अपना सहयोगी बना लें, अंत समय में ये तत्व हमें पूरा सहयोग दे। और सहयोग कौन किसको देता है? सहयोग हमेशा जिनके संस्कार एक दूसरे से मिलते हैं वो एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तो मानो जल है, जल का संस्कार अगर हमने धारण कर लिया होगा ना, तो तो जल कभी भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा, फ्लड में या सुनामी में कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जल को हमने अपना मित्र बना लिया। और जल को मित्र बनाने का मतलब क्या है? जल का संस्कार हम धारण कर ले। जल का मुख्य संस्कार कौन सा है? जल का संस्कार है फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट। जैसे जल होता है हर चीज में एडजस्ट, गिलास में लो गिलास में एडजस्ट हो जाता है, कटोरी में लो कटोरी में एडजस्ट हो जाएगा, थाली में लो थाली में एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम भी हर आत्मा के साथ एडजस्ट होकर के चल सके। ऐसे न कहें कि इनके साथ तो एडजस्ट होना बहुत आसान है, इनके साथ मुश्किल है। नहीं, हर आत्मा के साथ एडजस्ट होके चल सके, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, किसी के साथ टकराव न हो। तो इसका मतलब हमने जल का संस्कार धारण कर लिया, फिर जल कभी भी हमें कष्ट देने का, दुखी करने का कोई भी निमित्त नहीं बनेगा। और जल के कारण हमारे प्राण नहीं निकलेंगे, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। जल इसी प्रकार से पृथ्वी, पृथ्वी का मुख्य गुण कौन सा होता है? हरेक के गुण तो बहुत हैं, जल में तो और भी बहुत गुण है, सहनशीलता है, मतलब जल के अंदर ठंडकपन का गुण है, जल के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, बहुत सारे। लेकिन यहाँ हम एक एक गुण ही बताएंगे समय के अभाव में। ऐसे पृथ्वी का गुण कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है दातापन का। पृथ्वी देती है, पृथ्वी से ही देखो फल सब्जी अनाज सब कुछ पृथ्वी से मिलता है, पेट्रोल डीजल हर चीज पृथ्वी से मिलती है, पृथ्वी दाता है। ऐसे हम भी हमारे सम्मुख जो आए ना, हम दाता का पार्ट प्ले करें। कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं है, उसे प्रेम दें, स्नेह दें, सहयोग दें, शांति दें, शक्ति दें। तो उन सब चीजों में तो कोई पैसा खर्च होता नहीं, कोई बात नहीं है। तो हर आत्मा के साथ हम अगर स्नेह सहयोग ये ऐसा व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? पृथ्वी की तरह हमने ये गुण धारण कर लिए तो पृथ्वी हमारी कष्ट का कारण नहीं बनेगी। चाहे जितना अर्थक्वेक आएगा, भूचाल आएंगी, बिल्डिंग गिरेंगी, चारों तरफ हाहाकार होगा, लेकिन पृथ्वी हमारी मृत्यु का कारण नहीं, क्योंकि पृथ्वी को हमने अपना सहयोगी बना लिया, पृथ्वी से अपने संस्कार हमने मिला लिए। तो इसीलिए पृथ्वी का संस्कार कौन सा? दातापन का, वो पृथ्वी के साथ हम मिलाकर चले। ऐसे ही वायु भी बहुत विनाश का कारण बनेगी। साइक्लोन आते हैं, बहुत तेज हवा चलती है कई बार, और वायु मृत्यु का कारण बनती है। लेकिन वायु ये प्राण वायु भी है, वायु के बिना तो जीवन भी नहीं है। श्वास मनुष्य लेता है, वायु वही श्वास का कारण है। तो ऐसे ही वायु में सबसे बड़ा गुण कौन सा है? वायु हल्की होती है। जैसे पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, अपनी तरफ खींचती है, ऐसे वायु हर चीज को ऊपर उठाती है। दोनों में विपरीत गुण है, वायु ऊपर ले जाती है, पृथ्वी नीचे खींचती है, फिर भी संसार में वायु और पृथ्वी दोनों साथ साथ चलते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम भी, चाहे जितने भी विपरीत संस्कार वाले हों, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, ऑफिस वाले हों, कोई बिजनेस वाले हों, कोई भी हो, जितना भी विपरीत संस्कार, इनमें भी तो विपरीत संस्कार है वायु और पृथ्वी में, लेकिन फिर भी साथ साथ रहते हैं। हर जगह जहाँ जहाँ पृथ्वी है वहाँ वहाँ वायु है, हर जगह साथ साथ रहते हैं। तो इसी तरह चाहे जितने भी विपरीत संस्कार हों, हम उनके साथ साथ रह करके चल सके। यह है वायु का संस्कार। कोई भी परिस्थिति आए हम भारी ना, हल्के रहे। बस वायु आए, कोई भी परिस्थिति आई, आज परिस्थिति आई है कल चली जाएगी। कोई भी चीज रहने के लिए तो कभी भी आती नहीं है, चली जाती है। इस कारण से वायु को भी हम आजीवन में इस रीति से धारण करें, सदा जीवन में हल्के रहे। और देखो हल्के रहेंगे तो क्या होगा, कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर परमानेंट वार नहीं कर सकेगी। परिस्थिति आई, बस थोड़ी झलक दिखाई, परिस्थिति चली गई। इसी तरीके से आकाश का क्या गुण है, आकाश विशाल होता है। कितना विशाल है पूरे आकाश, सब तरफ का एक ही जैसा आकाश, अमेरिका का हो, रूस का हो, भारत का हो, कहीं का हो, आकाश पूरा एक विशालता। और जहां विशालता होती है ना, वहां क्षमा भाव होता है। जिसका हृदय विशाल होता है वो हर एक को क्षमा करता चलता है। हमें बाप दादा के साथ, ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ रहने का, दादियों के साथ रहने का बहुत सौभाग्य मिला। बड़ी से बड़ी घटना भी हो जाती थी तो भी बस क्षमा, इतना बड़ा गुण था उनके अंदर, ये क्षमा भाव हो जाता था। तो ये क्षमा भाव, तो वो भी हम भी क्षमा भाव, किसी ने हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन हमारी उसके प्रति क्षमा की दृष्टि रहे, वो आत्मा को कभी भी बदला लेने की भावना ना हो। जो भी महान पुरुष होके गए हैं वो सब क्षमा के कारण ही महान बने हैं। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं। क्षमा वीरों का गुण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा। वो हमेशा सोचेगा अच्छा मुझे मौका मिलेगा, मैं बदला लूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो अपने को आज हम देखें कि हम भी बाबा मामा दादियों की तरह महान हैं वो हैं या कायर है। कायर तो नहीं कि बदला लेने की भावना, हमें महान जितना जिसने करा हो हमें महान से महान बनना है। और पांचवा, ये आकाश की तरह अगर हमने ये गुण धारण कर लिया विशाल, तो आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी व्याधियां होंगी, रॉकेट, मिसाइल, बम, हाइड्रोजन बम, एटम बम, कोई भी होंगे वो हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आकाश को हमने अपना मित्र बना लिया, और आकाश मित्र होने के कारण समय पर वो जो भी आकाश का मित्र हैं उन सब की रक्षा करने के लिए बंधा हुआ है। तो इसीलिए आकाश जैसी विशालता धारण करे। और पांचवा तत्व है सूर्य, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि। तो प्रकृति के अंदर सूर्य जो है अग्नि का प्रतीक है। अग्नि में क्या विशेष गुण होता है? अग्नि में गुण होता है कि अग्नि में जो भी चीज डालो उसका रूप बदल जाता है। ऐसे ही हमारी भी ज्वालामुखी अग्नि ऐसी जली हुई हो बस कि कोई भी आए, ज्वालामुखी बाबा कहता है तुम्हारी योग की स्थिति ऐसी हो उसका रूप परिवर्तन हो, रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। तो ये तब होगा जब हमने ज्वालामुखी रूप धारण किया होगा। ज्वालामुखी माने योग की ऐसी स्थिति, और अंत में ये ही काम आएगी, ब्रह्मा बाबा की, मामा की, दादियों की यही तो स्थिति काम आती थी। बस सम्मुख जाते थे, ये पूछेंगे ये पूछेंगे, बस जाते ही सब भूल जाते थे एकदम, कोई भी बात नहीं याद आती थी और स्थिति बदल जाती थी। अशांत जाते थे, शांति की स्थिति में लहराते हुए वापस आ जाते थे। तो अंत में दुनिया के सामने हम बच्चे ही तो होंगे, तो जो हम बच्चे दुनिया के सामने हम ऐसा स्वरूप धारण करेंगे जिस स्वरूप से उन आत्माओं की स्थिति बदल जाए, दुखी आत्माएं सुख का अनुभव करती हुई चली जाए। और जब ये स्थिति होगी तभी वो कहेंगे हाँ यही भगवान का स्वरूप है, यही यहीं पर ही भगवान है, बाबा है। और तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी, बच्चों की भी प्रत्यक्षता होगी और हम सब बाबा के साथ ऊपर परम धाम हाईएस्ट जगह पर चल देंगे। ओम शांति, ओम शांति।